गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज आप लोगों को एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच मैं CC2 विषय समसामयिक भारत और शिक्षा विषय लेकर आया हूं। इसमें आज मैं आपको यूनिट 3 का भाग कराऊंगा, जिसका पहला टॉपिक है संविधान में संविधान का इंट्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत आज का क्वेश्चन है, संविधान क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करें। मतलब आज का टॉपिक है भारतीय भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो मूल है, जो प्रस्तावना है, वो क्या है और इसमें वर्णित नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान, संविधान है क्या? संविधान में आपको भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा, इसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान के बारे में, संविधान किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और स्वाधीनता है। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता, संविधान, स्वाधीनता, संप्रभुता उस राज्य के संविधान को ही प्रतिबिंब करती है और राष्ट्र विशेष की प्रगति और विकास का सूचक उसके संविधान को ही माना जाता है। संविधान का निर्माण उस राष्ट्र विशेष की जनता द्वारा अथवा संविधान निर्माण सभा द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको संविधान का थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि 1922 ईस्वी में स्वराज का अर्थ बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय ही भारत का संविधान बनाएगा। यानी कि महात्मा गांधी ने इस पर स्वराज में, स्वराज जो पत्रिका था उसमें बताया था, भारत का जो संविधान है वो भारतीय ही बनाएगा। यानी कि संविधान निर्माण सभा के जो भी होंगे मेंबर यहाँ, वो भारतीय ही होंगे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि एक गतिशील राष्ट्र वह है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर अपने लिए नई पोशाक बनवाता है। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो हमारे देश में ब्रिटिश शासन का शासन था, उनका ही संविधान हमारे देश में चलता था, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून ही हमारे देश में लागू होता था। तो नेहरू जी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए पुराने जो संविधान है, जो प्रारूप है, उसको उतार कर फेंकना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, उसके स्थान पर नए संविधान का निर्माण करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी भारत की स्वाधीनता के लिए संविधान सभा के गठन किए जाने की मांग होने लगा था कि जितने भी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियाँ था, सबका मांग था कि हमारे देश के संविधान का गठन होना चाहिए और इसके लिए एक क्या करना चाहिए, गठन, संविधान सभा का गठन करना चाहिए। और ये हुआ कि अंत में अंग्रेज शासन ने विवश होकर अंत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। मतलब 1946 ईस्वी में अंग्रेज ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। यहीं से संविधान बनने का मार्ग आगे बढ़ना चालू हुआ। अब भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान बनाने में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इस तरह से हमारे देश के संविधान बनने में कितने वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारे देश के संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें निर्माण के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ भी थे। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। आपको ये भी पता होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राम अम्बेडकर ने सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हो गया और ये हमारे देश में कब से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ये क्या हुआ, लागू हो गया। अभी इसकी हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अभी हमारे संविधान में 450 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। मतलब जिस समय संविधान बना था उस समय में इसमें क्या था, 395 ही अनुच्छेद था जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी क्या है, बढ़कर 450 हो गया अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 22 भागों में अभी विभाजित है। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, आते हैं संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी संविधान का जो एक किसी भी संविधान का प्रस्तावना क्या होता है, उसके उद्देशिका से प्रारंभ होता है। किसी भी संविधान का प्रस्तावना से प्रारंभ होता है जिसमें संविधान के मूल तत्व बताए जाते हैं और इसमें संविधान की प्रकृति, उसका विचार दर्शन एवं शासन की रीति नीति का मुख्य धारा को दर्शाया जाता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका मूल रूप से इस प्रकार है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, ये तो आप लोगों को याद भी होगा, नहीं है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कि इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, निवास, धर्म, उपासना, समता उपलब्ध कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और अंगीकृत अधिनियम करते हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस उद्देशिका में गणराज्य को लोकतंत्र बताने के साथ साथ समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। मतलब कि जो 1976 ईस्वी में हमारे संविधान में कौन सी संशोधन हुआ था, तो 42वां संशोधन हुआ था। इसमें दो शब्द जोड़ा गया था हमारे संविधान में, इसमें था कि समाजवादी और पथ निरपेक्ष इसमें जोड़ा गया था और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता को भी जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान की उद्देशिका इस प्रकार है, उपयुक्त प्रस्ताव के साथ भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। यह पुनीत वर्ष प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा दिन हमें स्मरण दिलाता है कि संविधान में निहित इसकी प्रस्तावना के उपयुक्त अंकित मूल्यों के प्रति हम निष्ठा बनाए रखें तथा शैक्षिक निहितार्थ हमें ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करने की प्रेरणा देता है जो हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप भावी समाज के निर्माण में सहायक हो। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने संविधान की प्रस्तावना को अपने में समाहित कर लेना चाहिए। मतलब कि आप जितने भी स्टूडेंट हो या जो भी हो, कम से कम हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको सभी को याद होना चाहिए और आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। अब आते हैं, मैं आपको इसमें अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि राज्य के, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मतलब संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपको यहाँ आज मैं उसको मैं आपको इसी में चर्चा कर रहा हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्धारण के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद में कितने से कितने अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, तो इसमें 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसको परिभाषित करते हुए MC छगला के अनुसार इस नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने में भारत की स्थिति पृथ्वी पर स्वर्ग के समान हो जाएगी। इसके अलावा भी अन्य इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं जो सरकार को कुछ निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशित करते हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान में स्थान प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज की स्थापना करना है। इस तत्वों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों का घोतक है। संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई, नीति निर्देशक तत्व उन आदर्श को प्राप्त करने के लिए पथ का काम करता है। इन तत्वों के माध्यम से भारतीय राज्य के आदर्शों तथा लक्षणों की गणना की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है ये आपको मैं बताया था, ये 36 से लेके कहाँ तक था नीति निर्देशक तत्व, यहाँ 36 से लेकर 51 तक था। इसमें 36 में अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 38 में राज द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बारे में बताया गया है। 39 में राज द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांतों को बताया गया है। इसी का 39A में है, 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, मतलब इसमें सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है, सभी को समान रूप से न्याय मिले। फिर 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में। 41 में है कुछ मामले में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 में है मानवीय कार्यों दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन के बारे में बताया गया है। 43A में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहयोग, और 43B में है सरकारी सम्मतियों को प्रोत्साहन करना इस प्रकार। और 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता होना चाहिए। और 45 में है, इसमें है कि बालपन या पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, और इसी में है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, इसी में बताया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। फिर है 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब जो ये कमज़ोर रूप से जो अनुसूचित जाति हो जनजाति हो जो कि शैक्षिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हो उनको बढ़ावा देने के लिए इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर आपको आता है 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाने जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के संबंधित सरकार का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। फिर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्वों के स्थानों एवं वस्तु का संरक्षण के बारे में बताया गया है। नगर पालिका का कार्यपालिका से अलगाव 50 और 51 में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करना। इस प्रकार हमारे संविधान में जो भी नीति निर्देशक तत्व है, जो भी दिया गया है, उसमें हमारे ये शक्ति हमारे राज्य सरकार को दिया गया है। ये एक राज्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने इस शक्ति का प्रयोग करे अपने राज्य के हित में, वहाँ के जनता के हित में। इस प्रकार आज आप लोगों को मैंने संविधान क्या है उसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसका परिचय दिया हूँ और उसकी प्रस्तावना का विस्तार रूप से वर्णन किया हूँ और अंत में इसके नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप लोगों का आज का ये वीडियो सुनने के बाद समझ में आएगा और आप लोग इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या या दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपके अंदर जो भी समस्या है उसके समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।